भारतीय दर्शन का आठवां चैप्टर है योग दर्शन। पहला टॉपिक है विषय प्रवेश। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के जिज्ञासु हैं, उनके लिए महर्षि पतंजलि का योग दर्शन एक अमूल्य निधि है। जो शरीर, इंद्रिय, मन के समस्त बंधनों से रहित शुद्ध आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए योग एक महान साधन है। महर्षि पतंजलि के नाम पर यह पातंजल दर्शन भी कहलाता है। पातंजल सूत्र या योग सूत्र ही इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। योग सूत्र पर व्यासकृत प्रसिद्ध भाष्य है, जो व्यास भाष्य या योग भाष्य कहलाता है। व्यास के भाष्य पर वाचस्पति मिश्र की प्रामाणिक टीका तत्व वैशार्वी है। भोजराज की वृत्ति और योगमणि प्रभा, योग विषयक सुबोध और प्रचलित पुस्तकें हैं। विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिक और योग सार संग्रह भी योग दर्शन के उपयोगी ग्रंथ हैं। पतंजल सूत्र चार पादों में विभक्त है। प्रथम पाद समाधि पाद कहलाता है। इसमें योग के स्वरूप, उद्देश्य और लक्षण, चित्त वृत्ति निरोध के उपाय तथा भिन्न भिन्न प्रकार के योगों की विवेचना की गई है। दूसरा पाद साधना पाद कहलाता है। इसमें क्रिया योग, क्लेश, कर्मफल और उनका दुखात्मक स्वभाव, दुखादि चतुष्टय, दुख, दुख का निदान, दुख की निवृत्ति और दुख निवृत्ति का उपाय आदि विषयों का वर्णन है। तीसरा पाद विभूति पाद कहलाता है। इसमें योग की अंतरंग अवस्थाओं तथा योगाभ्यास जनित सिद्धियों का वर्णन है। चौथा पाद है कैवल्य पाद। इसमें मुख्यतः कैवल्य या मुक्ति के स्वरूप की विवेचना की गई है। प्रसंगानुसार आत्मा, परलोक आदि विषयों का भी वर्णन है। सांख्य और योग में घनिष्ठ संबंध है। सच पूछिए तो सांख्य के सिद्धांत का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग हो गया है। प्रयोग ही योग है। सच पूछिए तो सांख्य के सिद्धांत का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग ही योग है। ज्ञान के विषय में सांख्य का जो विचार है, उसे योग भी मानता है। सांख्योक्त तो त्रिविध प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द योग को भी मान्य है। वह सांख्य के 25 तत्वों को भी स्वीकार करता है, परंतु उनमें एक और जोड़ देता है, ईश्वर। सांख्य मत के अनुसार विवेक ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। योग इस बात को मानता हुआ बतलाता है कि योगाभ्यास ही विवेक ज्ञान का साधन है। आत्मोन्नति के साधन रूप में योग की महत्ता को प्राय सभी भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है। यहाँ तक कि वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण सभी में योगाभ्यास की चर्चा है। जब तक मनुष्य का चित्त या अंतःकरण निर्मल और स्थिर नहीं होता, तब तक उसे धर्म या दर्शन के तथ्य का सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। शुद्ध हृदय और शांत मन में ही हम गूढ़ सत्यों को पा सकते हैं। आत्मशुद्धि के लिए योग ही सर्वोत्तम साधन है। इससे शरीर और मन की शुद्धि हो जाती है। इसीलिए सभी भारतीय दर्शन केवल चार्वाक को छोड़कर अपने अपने सिद्धांतों को यौगिक रीति से ध्यान, धारणा आदि के द्वारा स्पष्ट अनुभव करने के लिए प्रयत्न करते हैं। पातंजल दर्शन में योग के स्वरूप और उसके भिन्न भिन्न प्रकारों की सूक्ष्म आलोचना की गई है। योगाभ्यास के विविध अंगों और उनसे संबंध अन्यान्य आवश्यक विषयों पर भी गहरा विचार किया गया है। सांख्य तथा कतिपय अन्यान्य भारतीय दर्शन की तरह योग का भी यही सिद्धांत है कि विवेक ज्ञान अर्थात शरीर, मन, इंद्रिय आदि से आत्मा भिन्न है। ऐसा ज्ञान से ही मुक्ति पाना संभव है, परंतु यह ज्ञान तभी हो सकता है जब शारीरिक और मानसिक इंद्रियों, वृत्तियों का दमन करते हुए अर्थात क्रमशः शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार पर विजय प्राप्त करते हुए शुद्ध आत्मा या पुरुष के यथार्थ स्वरूप को पहचाने। तब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि और सुख दुख के भोक्ता, अहंकार, इन सब से आत्मा पृथक है। यह देश काल और कारण के बंधनों से परे है। यह आत्मा मुक्त और शाश्वत है। पाप, दुख, रोग, मृत्यु इन सबों से ऊपर है। वही अनुभव आत्मज्ञान है। इसी आत्मज्ञान या विवेक ज्ञान से मुक्ति अर्थात सकल दुखों की निवृत्ति होती है। आत्मज्ञान के साधक के लिए योग दर्शन व्यवहारिक मार्ग बतलाता है। सांख्य का अधिक जोर इस सिद्धांत पर है कि विवेक ज्ञान मुक्ति का साधन है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह अध्ययन, मनन और निधिध्यासन का भी निर्देश करता है, परंतु योग मुख्यतः व्यावहारिक पहलू पर जोर देता है, अर्थात मुक्ति या आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किन उपायों का अवलंबन किया जाए, किस प्रकार की आत्मशुद्धि और समाधि का अभ्यास किया जाए। योग के अभ्यास वाले प्रकरण में इन बातों का वर्णन किया जाएगा। इसके पूर्व हम यह देखें कि योग के अनुसार आत्मा का क्या स्वरूप है, चित्त का क्या कार्य है और शरीर मन आत्मा का परस्पर क्या संबंध है। योग दर्शन का दूसरा टॉपिक है योग का मनोविज्ञान। सांख्य योग के अनुसार जीव स्वतंत्र पुरुष है जो स्थूल शरीर से और विशेषतः सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार से संबंध है। जीव स्वभावतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यह वस्तुतः शारीरिक बंधनों और मानसिक विकारों से युक्त रहता है, परंतु अज्ञान के कारण यह चित्त के साथ अपना तादात्म्य कल्पित कर लेता है, अर्थात भ्रमवश अपने को चित्त समझने लगता है। चित्त प्रकृति का प्रथम विकार है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण के ऊपर सत्वगुण की प्रबलता रहती है। चित्त स्वभावतः जड़ है, परंतु आत्मा के निकटतम संपर्क में रहने के कारण वह आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है। निर्मल होने के कारण उस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे उसमें चैतन्य का आभास आ जाता है। जब चित्त का किसी विषय से संपर्क होता है, तब वह उसी का आकार धारण कर लेता है। इन्हीं विषयों के अनुरूप चित्त विकारों के द्वारा आत्मा को विषयों का ज्ञान होता है। यद्यपि आत्मा में स्वतः कोई विकार या परिणाम नहीं होता, तथापि परिवर्तनशील चित्त वृत्तियों में प्रतिबिंबित होने के कारण इसमें परिवर्तन का आभास होता है। जैसे नदी के हिलकोरे में प्रतिबिंबित चंद्रमा हिलता हुआ जान पड़ता है। चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। पहला प्रमाण अथवा सत्य ज्ञान, दूसरा विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान, तीसरा विकल्प अर्थात कल्पना, निद्रा अथवा नींद और 5वां स्मृति अथवा स्मरण। प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं, अनुमान और शब्द। इनके विषय में सांख्य का जो मत है वही मोटा मोटी योग का भी है। विषयों के संबंध में मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं अथवा भ्रम कहते हैं। संशय भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। विकल्प का अर्थ है वह शब्द जनित वृत्ति जिसका लगाव वस्तु स्थिति से नहीं हो। जैसे शून्य, आकाश, कुसुम, इन शब्दों से अर्थ बोध होते हैं, पर उन बोधों के अनुरूप कोई वस्तु नहीं है। निद्रा वह चित्रवृत्ति है जिसमें तमोगुण का प्राधान्य होता है और उसके कारण जागृत और स्वप्न अवस्थाओं के अनुभव विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था की सुषुप्ति कहते हैं। कुछ दार्शनिकों का मत है कि सुषुप्तावस्था में कोई भी मानसिक क्रिया नहीं होती और चैतन्य का लोप हो जाता है, परंतु ऐसा समझना ठीक नहीं। निद्रा भंग होने पर या जागने पर हम कहते हैं मैं खूब सोया, ऐसा सोया कि किसी विषय का बोध नहीं रहा इत्यादि, अर्थात निद्रावस्था की बात हमें स्मरण रहती है। इसे सूचित होता है कि निद्रावस्था का प्रत्यक्ष अनुभव हमें अवश्य ही हुआ होगा, तभी तो वह स्मरण में आता है। इस तरह सिद्ध होता है कि सुषुप्तावस्था में भी मन अपना कार्य करता रहता है। विषय का अभाव ही इस वृत्ति का आलंबन है, अतः अनिद्रा को अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति कहते हैं। अतीत अनुभवों की यथावत मानसिक प्रतीत स्मृति है। इन 5 वृत्तियों के अंदर सभी चित्त वृत्तियां आ जाती हैं। जब चित्त किसी वृत्ति में परिणित हो जाता है, तब उस पर आत्मा का प्रकाश पड़ता है और वह आत्मसात हो जाता है, अर्थात आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि यह मेरी ही अवस्था है। इसलिए ऐसा भासित होता है कि पुरुष आत्मा ही सब कुछ सोचता और करता है। जैसे वही जन्म लेता और मरता है, उसी में वृद्धि या ह्रास होता है, वही सोता और जागता है, वही कल्पना या स्मरण करता है, वही भूल करता है और वही सुधारता है इत्यादि, परंतु यथार्थ में यह सब भ्रम है। जन्म मरण आदि क्रियाएं शरीर की हैं, सोना जागना आदि क्रियाएं मन की हैं, ध्यान कल्पना स्मृति सभी मन की वृत्तियां हैं। आत्मा इन सभी विकारों से परे है, वह इनसे संयुक्त इसलिए जान पड़ता है कि वह चित्त में प्रतिबिंबित हो जाता है, उसी तरह जैसे दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब उतर आता है। इस तरह पांच प्रकार की क्लेशकर भ्रांत वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। ये पंच क्लिष्ट वृत्तियां हैं। पहली अविद्या अर्थात अनित्य को नित्य समझना, जैसे अनात्म पदार्थ को आत्मा समझ लेना, मिथ्या सुख को वास्तविक सुख समझ लेना, असुचि को सुचि समझ लेना। दूसरा अस्मिता अर्थात आत्मा को भ्रमवश बुद्धि या मन समझ लेना। तीसरा राग अथवा सुख और उसके साधनों की प्राप्ति के लिए इच्छा। चौथा द्वेष दुख और उससे बैर। पांचवा अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय। जब तक चित्त में विकार और परिणाम होते रहते हैं तब तक उन पर आत्मा का प्रकाश पड़ता रहता है और विवेक ज्ञान के अभाव में आत्मा उन्हीं में अपने को देखने लगता है। फलस्वरूप यह सांसारिक विषयों से सुख दुख का अनुभव करने लगता है और उनमें राग द्वेष के भाव रखने लगता है। यही आत्मा का बंधन है। इस बंधन से मुक्ति पाने के निमित्त शरीर इंद्रिय मन और चित्तवृत्तियों का निरोध करना आवश्यक है। जब कार्यचित्त का धारा प्रवाह बंद हो जाता है और वह कारण चित्त के रूप में अथवा शांत अवस्था में आ जाता है, तब आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध चैतन्य रूप में देखता है। चित्तवृत्तियों के निरोध के द्वारा यही आत्म साक्षात्कार योग का उद्देश्य है। योग दर्शन का तीसरा टॉपिक है योग का अभ्यास। योग का अभ्यास का पहला टॉपिक है योग का स्वरूप तथा प्रभेद। योग का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध। यहाँ योग का जीवात्मा और परमात्मा का मिलन नहीं समझना चाहिए। योग का उद्देश्य है आत्मा को अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराना, जिससे वह अपने को मानसिक विकारों से पृथक समझ सके। परंतु यह तभी हो सकता है जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। अतएव योग का काम है चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध करना। चित्त भूमि मानसिक अवस्था के पांच रूप हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ मानसिक वृत्तियों का निरोध होता ही है। एक अवस्था जैसे प्रेम में दूसरी अवस्था जैसे घृणा का निरोध होता है, परंतु इनमें प्रत्येक अवस्था योग साधन के अनुकूल नहीं होती। क्षिप्त अवस्था में चित्त रजोगुण के प्रभाव में रहता है और एक विषय से दूसरे विषय पर दौड़ता रहता है, चित्त में स्थिरता नहीं रहती। यह अवस्था योग के अनुकूल नहीं है क्योंकि इसमें मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रहता। मूढ़ अवस्था में तम की प्रधानता रहती है और इससे निद्रा आलस्य आदि का प्रादुर्भाव होता है। निद्रा अवस्था में चित्त की कुछ वृत्तियों का कुछ काल के लिए तिरोभाव हो जाता है, परंतु यह अवस्था योगावस्था नहीं है। निद्रा तब होती है जब चित्त तमोगुण से आच्छन्न हो जाता है, परंतु योग के लिए सत्वगुण की प्रबलता से चित्त की शुद्धि होना आवश्यक है। विक्षिप्तावस्था में मन थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है, पर तुरंत ही अन्य विषय की ओर ध्यान चला जाता है और पहला विषय छूट जाता है। यह चित्त की आंशिक स्थिरता की अवस्था है। इसे योग नहीं कह सकते क्योंकि इसमें चित्त की वृत्ति का पूरा निरोध नहीं होता। अविद्या जनित क्लेशों को दूर करने में यह असमर्थ है। एकाग्र अवस्था वह है जिसमें चित्त देर तक एक विषय पर लगा रहता है या किसी वस्तु पर मानसिक केंद्रीकरण की अवस्था है। इस अवस्था में चित्त किसी विषय पर विचार या ध्यान करता रहता है, इसीलिए इसमें भी सभी चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता। तथापि यह योग की पहली सीढ़ी है। अंतिम अवस्था निरुद्धावस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का अर्थात ध्येय विषय तक का भी लोप हो जाता है और चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिर शांत अवस्था में आ जाता है। एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाएं योग के अनुकूल हैं क्योंकि उनमें सत्वगुण का अधिकाधिक प्रकाश रहता है, जो आत्म साक्षात्कार में सहायक होता है। एकाग्र अवस्था को संप्रज्ञात योग कहते हैं क्योंकि इसमें ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान रहता है। इसे समापत्ति या संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में चित्त ध्येय विषय में लीन होकर तन्मय हो जाता है। इसी तरह निरुद्ध अवस्था को असंप्रज्ञात योग या असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का लोप हो जाता है और किसी विषय का ज्ञान नहीं रहता। यही समाधि की अवस्था है। इससे सभी वृत्तियों और विषयों का तिरोभाव अथवा लोप हो जाता है। चित्त की चंचल लहरों का उठना बंद हो जाता है और वह शांत जल की तरह स्थिर हो जाता है। इन दोनों अर्थात एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं को सामान्यतः समाधि योग कहा जाता है। जैसा कि कहा जा चुका है, समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ध्येय विषयों के भेदानुसार संप्रज्ञात समाधि की चार कोटियां होती हैं। जब किसी स्थूल भौतिक पदार्थ पर चित्त एकाग्र किया जाता है, तब वह समाधि सवितर्क कहलाती है, जैसे किसी मूर्ति पर ध्यान रखना। इसके स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर साधक को सूक्ष्म विषय का, जैसे किसी तन्मात्र का ध्यान करना चाहिए। इसको सविचार समाधि कहते हैं। ततः पर उससे भी सूक्ष्मतर विषय, जैसे इंद्रिय में ध्यान जमाना चाहिए, जिससे उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट हो जाए। इसे सानत समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि की अंतिम कोटि को सास्मित समाधि कहते हैं। सास्मित क्योंकि इसमें ध्यान का विषय केवल अस्मिता या अहंकार मात्र रहता है। इस समाधि के फलस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात आत्मा यथार्थतः शरीर मन अहंकार सबों से भिन्न है, ऐसा अनुभव या विवेक ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार एक के अनंतर दूसरे बाह्य या आंतरिक विषय का यथार्थ स्वरूप ज्ञात करते करते और उसे छोड़ते हुए चित्त का संबंध सभी विषयों से छूट जाता है। यही अंतिम अवस्था असंप्रज्ञात समाधि या परम योग है। यह समाधि की अंतिम सीढ़ी है। यहाँ पहुँच जाने पर योगी समस्त विषय संसार से मुक्त हो जाता है, मानो उसके लिए संसार का कोई बंधन रहता ही नहीं। इस अवस्था में आत्मा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप में रहता है और अपने कैवल्य या मुक्तावस्था के प्रकाश का आनंद लेता है। इस अवस्था को प्राप्त करने पर पुरुष सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है, जो जीवन का चरम पुरुषार्थ है। यह जीवन क्या है? शांति का अन्वेषण है अथवा उसके साधनों का अन्वेषण है। यह योग वह आध्यात्मिक मार्ग है जो यथार्थ आत्मज्ञान के द्वारा सब दुखों का समूल नाश कर हमें अभीष्ट लक्ष्य पर पहुंचाता है। परंतु इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति सहज ही नहीं हो सकती। यदि किसी के लिए एक बार समाधि प्राप्ति के द्वारा दुख निवृत्ति संभव भी हो, तो फिर वह दोबारा दुखों के जाल में फंस सकता है। जब तक पूर्व कर्म जन्य सभी संस्कारों का नाश नहीं हो जाता, तब तक चित्त की सभी वृत्तियों का अंत नहीं हो जाता, तब तक दुखों के पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। भूत और वर्तमान के विविध कर्मों से उत्पन्न संस्कारों को नष्ट करने के लिए समाधि की स्थिति में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहना बड़ा ही दुस्तर कार्य है। इसके लिए चिर साधना और कठिन योगाभ्यास की जरूरत है। योग के तीन प्रमुख मार्ग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनुष्य को अपनी बुद्धि, स्वभाव और योग्यता के अनुकूल इनमें से कोई एक चुन लेना चाहिए। जिनका अधिक झुकाव ज्ञान की तरफ है, उन्हें ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए, अर्थात संसार के विषयों का सम्यक परिशीलन करते हुए उन सबों से, शरीर और मन से भी अपने को पृथक बोध कराना चाहिए। जो भाव प्रधान है, उसके लिए भक्ति मार्ग है, अर्थात श्रद्धा और भक्ति पूर्वक ईश्वर की उपासना में रत रहना चाहिए। इस मार्ग से भी साधक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो लोग अधिक कर्म या कठिन साधना रहने के योग्य हैं, उनके लिए कर्म योग है। तपश्चर्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान इनके मुख्य अंग हैं। कर्म योग या क्रिया योग भी मुक्ति का साधक है। हाँ, इन मार्गों का अवलंबन सच्चे मन से होना चाहिए। योग का अभ्यास का दूसरा टॉपिक है योग के अष्टांग साधन। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, जब तक मनुष्य के चित्त में विकार भरा रहता है और उसकी बुद्धि दूषित रहती है, तब तक वह तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। शुद्ध हृदय और निर्मल बुद्धि से ही आत्मज्ञान उपलब्ध हो सकता है। सांख्य योग के मतानुसार मुक्ति के लिए प्रज्ञा आवश्यक है। प्रज्ञा का अर्थ है आत्मदृष्टि के द्वारा इस सत्य का दर्शन कि आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध चैतन्य स्वरूप और शरीर तथा मन से सर्वथा भिन्न है। परंतु यह दृष्टि तभी हो सकती है जब अंतःकरण तथा अंतःकरण सर्वथा निर्विकार शुद्ध और शांत हो जाए। चित्त की शुद्धि और पवित्रता के लिए योग 8 प्रकार के साधन बतलाता है। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 योगांग कहलाते हैं। योग का प्रथम अंग है यम। इसके निम्नलिखित अंग हैं, अहिंसा अर्थात किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना, दूसरा सत्य अर्थात किसी से किसी तरह का झूठ नहीं बोलना, तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, चौथा ब्रह्मचर्य अर्थात विषय वासना की ओर नहीं जाना, और पांचवा अपरिग्रह अर्थात लोभवश अनावश्यक वस्तु ग्रहण नहीं करना। ये सब साधन सर्वविदित हैं, अतः उनकी विशेष व्याख्या आवश्यक नहीं, तथापि योग में इनकी विस्तृत विवेचना की गई है। योगी के लिए इनका साधन अत्यावश्यक है, क्योंकि मन को सबल बनाने के लिए शरीर को सबल बनाना आवश्यक है। जो काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसका मन या शरीर सबल नहीं रह सकता। इसी तरह जब तक मनुष्य का मन पाप वासनाओं से भरा और चंचल रहता है, तब तक वह किसी विषय पर चित्त एकाग्र नहीं कर सकता। इसीलिए योग या समाधि के साधक को सभी आसक्तियों और कुप्रवृत्तियों से विरत होना आवश्यक है। योग का दूसरा अंग है नियम या सदाचार का पालन। इसके निम्नलिखित अंग हैं, शौच अर्थात वायु शुद्धि अर्थात शारीरिक शुद्धि जैसे स्नान और पवित्र भोजन के द्वारा, तथा आभ्यंतर शुद्धि अर्थात मानसिक शुद्धि जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता आदि के द्वारा। दूसरा संतोष अर्थात उचित प्रयास से जितना ही प्राप्त हो उससे संतुष्ट रहना। तीसरा तप जैसे सर्दी गर्मी आदि सहने का अभ्यास, कठिन व्रत का पालन करना आदि। चौथा स्वाध्याय, नियम पूर्वक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। पांचवा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का ध्यान और उन पर अपने को छोड़ देना। आसन शरीर का साधन है। इसका अर्थ है शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जिसमें निश्चल होकर सुख के साथ देर तक रह सके। नाना प्रकार के आसन होते हैं जैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, सिद्धासन, शीर्षासन, गरुड़ासन, मयूरासन, स्वासन आदि। इनका ज्ञान किसी सिद्ध गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। चित्त की एकाग्रता के लिए शरीर का अनुशासन भी आवश्यक है जितना मन का। यदि शरीर रोगादि बाधाओं से पूर्णतः मुक्त नहीं रहे तो समाधि लगाना बड़ा ही कठिन है। अतः आरोग्य साधन के लिए बहुत से नियम निर्धारित करना है जिससे शरीर समाधि क्रिया के योग्य बन सके। शरीर और मन को शुद्ध तथा सबल बनाने के लिए तथा दीर्घायु प्राप्त करने के लिए योग में नाना प्रकार के नियम बतलाए गए हैं। योगाभ्यास शरीर को निरोग तथा सबल बनाए रखने के लिए उत्तम साधन है। इन आसनों के द्वारा सभी अंगों विशेषतः स्नायु मंडल इस तरह वश में किए जा सकते हैं कि वे मन में कोई विशेष प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सके। प्राणायाम का अर्थ है श्वास का नियंत्रण। इस क्रिया के 3 अंग होते हैं। पहला पूरक अर्थात पूरा श्वास भीतर खींचना, दूसरा कुंभक अर्थात श्वास को भीतर रोकना, और तीसरा रेचक अर्थात नियमित विधि से श्वास छोड़ना। इन क्रियाओं का ज्ञान सिद्ध गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। श्वास के व्यायाम से हृदय पुष्ट होता है और उसमें बल आता है। इसे चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है। योग इस दिशा में और भी आगे बढ़ता है और चित्त एकाग्र साधन के लिए प्राणायाम का निर्देश करता है, क्योंकि इस प्राणायाम के द्वारा शरीर और मन में दृढ़ता आती है। जब तक श्वास की क्रिया चलती है तब तक चित्त भी उनके साथ चंचल रहता है। जब श्वास वायु की गति स्थगित हो जाती है तब मन भी निष्पंद या स्थिर हो जाता है। इस तरह प्राणायाम के अभ्यास से योगी बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकता है और समाधि की अवधि को बढ़ा सकता है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को अपने अपने बाह्य विषयों से खींचकर हटाना और उन्हें मन के वश में रखना। जब इंद्रिय पूर्णतः मन के वश में आ जाते हैं तब वे अपने स्वाभाविक विषयों से हटकर मन की ओर लग जाते हैं। इस अवस्था में आंख कान के सामने सांसारिक विषय रहते हुए भी हम देख सुन नहीं सकते। रूप, रस, गंध, शब्द या स्पर्श का कोई भी प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। यह अवस्था बहुत ही कठिन है। यद्यपि यह असंभव नहीं है, इसके लिए अत्यंत दृढ़ संकल्प और प्रौढ़ इंद्रिय निग्रह की साधना आवश्यक है। उपयुक्त 5 अनुशासन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग साधन कहलाते हैं। शेष तीन धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग साधन कहलाते हैं, क्योंकि उनका योग समाधि से सीधा संपर्क है। धारणा का अर्थ है चित्त को अभिष्ट विषय पर जमाना। यह विषय बाह्य पदार्थ भी हो सकता है, जैसे सूर्य या किसी देवता की प्रतिमा, और अपना शरीर भी, जैसे अपनी नाभि या भौहों का मध्य भाग। किसी विषय पर दृढ़ता पूर्वक चित्त को एकाग्र करने की शक्ति ही योग की असल कुंजी है। इसी को सिद्ध करने वाला समाधि अवस्था तक पहुंच सकता है। इसके बाद की अगली सीढ़ी है ध्यान। ध्यान का अर्थ है ध्येय विषय का निरंतर मनन, अर्थात उसी विषय को लेकर विचार का अनवच्छिन्न अर्थात लगातार प्रवाह। इसके द्वारा विषय का सुस्पष्ट ज्ञान हो जाता है। पहले भिन्न भिन्न अंशों या स्वरूपों का बोध होता है, तदनंतर अविराम ध्यान के द्वारा संपूर्ण चित्त आ जाता है और उस वस्तु के असली रूप का दर्शन हो जाता है। इस तरह योगी के मन में ध्यान के द्वारा ध्येय वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट हो जाता है। योगासन की अंतिम सीढ़ी है समाधि। इस अवस्था में मन ध्येय विषय में इतना लीन हो जाता है कि वह उसमें तन्मय हो जाता है और अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रखता। ध्यान की अवस्था में ध्येय विषय और ध्यान की क्रिया ये दोनों पृथक प्रतीत होते हैं, परंतु समाधि की अवस्था में ध्यान की क्रिया का पृथक अनुभव नहीं होता। वह ध्येय विषय में डूबकर अपने को खो बैठती है। इस अवस्था में केवल ध्येय मात्र रह जाता है। समाधिस्थ योगी को यह भी पता नहीं रहता कि वह किसी वस्तु के ध्यान में मग्न है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, योग का लक्षण किया जा चुका है, चित्तवृत्ति का निरोध। अभी जिस समाधि का वर्णन किया गया है वह इसी साध्य अर्थात चित्तवृत्ति निरोध का साधन है। धारणा, ध्यान और समाधि ये तीन योग के अंतरंग साधन हैं। इन तीनों का विषय एक ही रहना चाहिए, अर्थात एक ही विषय को लेकर पहले चित्त में धारणा, तब ध्यान और अंत में समाधि होनी चाहिए। ये तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं, जो योगी के लिए अत्यावश्यक हैं। कहा जाता है कि योगाभ्यास करते समय साधक को विशेष अवस्थाओं में विशेष सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ये सिद्धियाँ 8 प्रकार की हैं, अतः इन्हें अष्ट सिद्धि या अष्टैश्वर्य कहते हैं। ये हैं, पहला अणिमा, अर्थात योगी चाहे तो अणु के समान छोटा या अदृश्य बन सकता है। दूसरा लघिमा, अर्थात योगी चाहे तो रुई से भी हल्का होकर उड़ जा सकता है। तीसरा महिमा, अर्थात योगी चाहे तो पहाड़ के समान बड़ा बन जा सकता है। चौथा प्राप्ति, योगी चाहे तो कहीं से कोई वस्तु मंगा ले सकता है। पांचवा प्रकाम्य, योगी की इच्छा शक्ति बाधा रहित हो जाती है। छठवां वशित्व, अर्थात योगी सब जीवों को वशीभूत कर सकता है। सातवां ईषित्व, वह सब भौतिक पदार्थों पर अधिकार जमा सकता है। आठवां यत्र का भाव सायित्व, अर्थात योगी का जो संकल्प होता है उसकी सिद्धि हो जाती है। परंतु योग दर्शन का बड़ा कड़ा आदेश है कि साधक इन ऐश्वर्यों के लोभ से योग साधना में प्रवृत्त नहीं हो। योग का लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति। साधक को अलौकिक ऐश्वर्यों के चकाचौंध में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वह पथभ्रष्ट हो जाता है। योगी को चाहिए कि वह सिद्धियों के फेर में नहीं पड़कर आगे बढ़ता जाए और अंतिम लक्ष्य आत्मदर्शन पर पहुंच जाए। योग दर्शन का चौथा टॉपिक है ईश्वर। प्राचीन योग दर्शन के ईश्वर का स्थान कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं दिखता। स्वयं पतंजलि को जगत की समस्या हल करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं दिख पड़ती। उनकी दृष्टि में ईश्वर का उतना सैद्धांतिक मूल्य नहीं है जितना व्यवहारिक। ईश्वर प्राणिधान की उपयोगिता इसी में है कि चित्त की एकाग्रता या ध्यान के साधनों में एक वह भी है, पर योग दर्शन के पिछले लेखक सैद्धांतिक दृष्टि से ईश्वर के स्वरूप की विवेचना भी करते हैं और ईश्वर के अस्तित्व के लिए युक्तियां भी देते हैं। इस तरह योग दर्शन के ग्रंथों में ईश्वर संबंधी युक्ति विचार भी मिलते हैं। योग के अनुसार ईश्वर परम पुरुष है, जो सभी जीवों से ऊपर और सभी दोषों से रहित है। वह नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, पूर्ण परमात्मा है। संसार के सभी जीव अविद्या, अहंकार, वासना, राग, द्वेष और अभिनिवेश अर्थात मृत्यु और भय आदि के कारण दुख पाते हैं। भांति भांति के कर्म, सुकर्म, कुकर्म और विकर्म करते हैं और उनके विपाक या फलस्वरूप सुख दुख भोग करते हैं। वे पूर्व जन्म के निहित संस्कार आशय से भी प्रभावित होते हैं। दुखों से मुक्ति या कैवल्य प्राप्त करने पर मुक्तात्मा के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह सर्वदा से मुक्त था, केवल ईश्वर ही नित्य मुक्त कहा जा सकता है। वह सर्व बंधन रहित और सर्व क्लेश रहित है। वह क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इन सबों से अपरामृष्ट या अप्रभावित रहता है। वह सदा एकरस और निर्विकार है। कर्म और उनके फल इसे नहीं व्याप्त करते। वह पूर्ण अनंत और अद्वितीय है, उसके समान दूसरा कोई नहीं। वह पूर्ण ज्ञान का भंडार है और इच्छा मात्र से समस्त जगत का परिचालन कर सकता है। वह अनंत शक्ति और ज्ञान से युक्त सकल विश्व का नियंता है। वह केवल सदिच्छाओं से पूर्ण है। इन्हीं कारणों से परमात्मा जीवात्माओं से भिन्न है। ईश्वर की सिद्धि के लिए निम्नलिखित युक्तियां दी जाती हैं। पहला, वेद, उपनिषद आदि समस्त शास्त्र ईश्वर या परमात्मा को आदि सत्ता के रूप में मानते हैं। उसी का साक्षात्कार जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। अतएव ईश्वर का अस्तित्व शास्त्र सम्मत होने के कारण सिद्ध है। दूसरा, जिस वस्तु की न्यूनाधिक मात्रा रहती है उसकी एक अल्पतम और अधिकतम सीमा भी रहनी चाहिए। संसार में छोटे बड़े परमाणु देखने में आते हैं। सबसे अल्पतम परमाणु है अणु, सबसे अधिकतम परमाणु है आकाश। इसी तरह ज्ञान और शक्ति की भी भिन्न भिन्न मात्राएं देखने में आती हैं, इसीलिए उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए। अर्थात एक ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसमें सार्वजनिक ज्ञान और शक्ति हो, वही परम पुरुष ईश्वर है। ईश्वर के समान ज्ञान और शक्ति वाला दूसरा पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि वैसी अवस्था में उन दोनों में संघर्ष हो जाता है और फलस्वरूप जगत में अव्यवस्था हो जाती है। तीसरा, पुरुष और प्रकृति के संयोग से संसार की सृष्टि होती है और दोनों के विच्छेद से प्रलय होता है। पुरुष और प्रकृति दो भिन्न भिन्न तत्व हैं। दोनों का संयोग या विभाग स्वभावतः नहीं हो सकता। इसके लिए एक ऐसा निमित्त कारण मानना पड़ेगा जो अनंत बुद्धिमान हो और जीवों के अदृष्टानुसार प्रकृति से पुरुष का संयोग या वियोग कराए। जीवात्मा या पुरुष स्वयं अपना अदृष्ट नहीं जानता, इसीलिए एक ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा को मानना आवश्यक है जो जीवों के अदृष्टानुसार संसार की रचना या संहार कर पुरुष या प्रकृति का संयोग या वियोग कराता रहे। यही ईश्वर है, जिसकी प्रेरणा के बिना प्रकृति जगत का उस रूप में विकास नहीं कर सकती जो जीवों की आत्मोन्नति तथा मुक्ति के लिए अनुकूल हो। पतंजलि का कहना है कि ईश्वर प्राणिधान भी समाधि का एक साधन है, जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। बाद के लेखक और भी आगे बढ़ गए हैं। उनके विचार में ईश्वर प्राणिधान समाधि के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है। कारण यह है कि ईश्वर केवल ध्यान का ईश्वर प्रणिधान विषय जैसे अन्यान्य ध्येय विषय हैं ही नहीं, प्रत्युत वह महाप्रभु है जो अपनी कृपा से उपासकों के पाप और दोष दूर कर उनके लिए योग का मार्ग सुगम बना देता है। जो ईश्वर का सच्चा उपासक है और उसी पर निर्भर रहता है, वह सर्वदा ईश्वर के ध्यान में लीन रहता है और संपूर्ण जगत में ईश्वर को व्याप्त देखता है। ऐसे भक्त को परमपिता की सर्वोच्च विभूति, हृदय की शुद्धता और बुद्धि का प्रकाश मिलता है। ईश्वर उनके पद से क्लेशादि सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं और योग सिद्धि के अनुकूल परिस्थिति बना देते हैं। इस तरह ईश्वर की दया से आश्चर्यजनक चमत्कार हो सकते हैं, परंतु हमें भी मैत्री, करुणा, सत्य, शौच तथा ईश्वरोपासना के द्वारा अपने को उनकी कृपा का पात्र बनाना चाहिए। योग दर्शन का पांचवा और अंतिम टॉपिक है उपसंहार। कटु आलोचक की दृष्टि में योग में उतना दार्शनिक सिद्धांत नहीं दिखलाई पड़ेगा जितना रहस्यवाद या अलौकिक चमत्कार। योग का आत्म विषयक सिद्धांत अर्थात आत्मा, शरीर, मन, अहंकार से बिल्कुल पृथक है। लोकमत और असाधारण मनोविज्ञान से बहुत दूर है। अतएव जनसाधारण की दृष्टि में योग दुर्गम और रहस्यमय प्रतीत होता है। इसी तरह योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सिद्धियां भी अलौकिक हैं। भौतिक विज्ञान या मनोविज्ञान के जितने नियम ज्ञात हैं उनके साथ इनका समन्वय नहीं होता, इसलिए ये बातें जादू टोनों की बातें सी मालूम होती हैं जिनमें आदिकालीन युग के लोग विश्वास करते थे। परंतु यहाँ यह बात विचारनी है कि यौगिक आत्म साक्षात्कार सांख्य दर्शन के ठोस आधार पर अवलंबित है, जिसके अनुसार आत्मा नित्य और शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। यदि ऐसा विषयातीत आत्मा सत्य है तो यह मानना पड़ेगा कि विषयानुभव के स्तर के ऊपर भी कोई स्तर है और ऐसी शक्तियां भी आ सकती हैं जो साधारण भौतिक और ऐन्द्रियतिक शक्तियों से बढ़कर हैं। इन आध्यात्मिक तत्वों की झलक भिन्न भिन्न देशों के ऋषियों और महात्माओं को तो मिली ही है, साथ ही साथ बड़े बड़े दार्शनिकों ने जैसे प्लेटो, अरस्तु, स्पिनोजा, लाइबनीज, कांट और हेगल आदि ने भी इसे स्वीकार किया है। अध्यात्म तत्वानुसंधान समिति, द सोसाइटी फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च तथा आधुनिक मनस्तत्व विश्लेषण साइकोएनालिसिस इस दिशा में लोगों की काफी ज्ञान वृद्धि कर रहे हैं। जो बातें अज्ञान के अंधकार में निहित थी उन पर अब क्रमशः प्रकाश पड़ रहा है। योग इसी दिशा में आगे बढ़कर पुरुष को अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन करने के लिए शुद्धि और आत्मसंयम का व्यवहारिक उपाय बतलाता है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों दृष्टियों से योग सांख्य से बढ़ा चढ़ा है, क्योंकि वह ईश्वर को भी मानता है और यथार्थ अनुभूतियों को पकड़कर चलता है, जिससे साधक के मन में विश्वास जमता है। योग का तत्व समझने के लिए श्रद्धापूर्वक इसका अध्ययन और अभ्यास करना आवश्यक है। मिस कास्टर कहती हैं, मुझे विश्वास है कि जिसे लोग इस जीवन का यवनिकापात समझ लेते हैं, उससे परे भी एक प्रदेश है, और जो दृढ़ संकल्प लेकर चढ़ेंगे वे वहां तक पहुंचकर उसका पता भी पा सकते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी योग आधुनिक दृष्टि से विशेष उपकारी समझा जा रहा है। ये था तंजलि का योग दर्शन।